नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजगीर में खेली जा रही महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल भारतीय टीम का जापान से और चीन का मुकाबला मलेशिया से होगा। बक्सर पुलिस ने पटना के महेंद्र घाट में तैनात रेलवे के वरीय प्रशाखाभियंता विवेक रंजन को 66 लाख रुपए मूल्य के सोने के साथ गिरफ्तार किया। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति। और प्रदेश में कई स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर। हाजीपुर और पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। अब समाचार विस्तार से। राजगीर में खेली जा रही महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल होंगे। भारतीय टीम का सेमीफाइनल मैच में मुकाबला जापान से होगा। वहीं चीन की टीम मलेशिया के खिलाफ मैच खेलेगी। इससे पहले कल खेले गए अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से पराजित कर दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल दागे जबकि 1 गोल नवनीत कौर ने किया। इस जीत के साथ ही भारत प्रतियोगिता में अब तक सभी 5 मैच जीतकर 15 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में अब तक 26 गोल किए हैं। कर्नल सीके नायडू अंडर 23 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान हरियाणा ने बिहार को पारी और 238 रन के विशाल अंतर से पराजित कर दिया। गुरुग्राम क्रिकेट ग्राउंड सुल्तानपुर में पहले चरण के अपने अंतिम और चौथे मुकाबले में बिहार ने पहली पारी में 117 और दूसरी पारी में 143 रन बनाए। हरियाणा ने अपनी पहली पारी के आधार पर बिहार को 498 रन का लक्ष्य दिया था। बक्सर पुलिस ने पटना के महेंद्रू घाट में तैनात रेलवे के वरीय प्रशाखाभियंता विवेक रंजन को 66 लाख रुपए मूल्य के सोने के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से सोने के 8 बिस्किट बरामद किए हैं जिसका वजन 800 ग्राम है। मौके से विवेक रंजन के चालक गुंजन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। बक्सर पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना सीबीआई को दी जिसके बाद सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर कर लिया। इसके बाद सीबीआई ने विवेक रंजन के पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर स्थित आवासीय परिसर में छापेमारी की। देर रात तक छापेमारी जारी थी। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन मामले में गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के 2 निकट सहयोगियों प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों से ऊर्जा विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित ठेके के बारे में पूछताछ हो रही है। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। उपचुनाव के लिए नामांकन करने वालों में जदयू के अभिषेक झा, राजद के प्रोफेसर गोपी किशन और जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम प्रमुख हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि 21 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। राज्य में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 नवंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के लिए मतदान 29 नवंबर को होगा। वहीं चौथे चरण में 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इधर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद विभिन्न जिलों में 7 और पैक्स के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। अनियमितता को लेकर अब तक कुल 46 पैक्सों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जा चुकी है। राज्य भर के लगभग 1,20,000 शिक्षकों ने अब तक तबादले के लिए आवेदन किए हैं। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पिछले 11 दिनों से स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षक 22 नवम्बर तक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ में जुटे शिक्षाविदों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने पर बल दिया है। 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन उद्घाटन सत्र में 4 अलग अलग सत्रों में विशद चर्चा की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वपरंपरा को जागृत कर भारत को विकसित बनाया जा सकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की ऐतिहासिकता की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ नालंदा कॉरिडोर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित ज्ञान कुंभ में बिहार समेत 13 राज्यों के शिक्षाविद, शोधार्थी और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से किया गया है। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 22 नवंबर से 24 नवंबर तक इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्वी राज्यों के 400 से अधिक लोक कलाकार जुटेंगे और अपने अपने प्रांत की लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें पटना के 56 मरीज हैं। वहीं राजधानी पटना से चिकनगुनिया के भी 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। श्री मोदी ने इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि भारत की जनता का भी सम्मान है।
मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
श्री मोदी ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में नाइजीरिया की महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका रही है। प्रदेश में पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 दिनों के दौरान औसत न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज सुबह से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता का स्तर कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात बाधित हुआ है। प्रदेश में कई स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 366 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना की हवा भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहां का AQI 301 रिकॉर्ड किया गया। वहीं अन्य शहरों में राजगीर का AQI 256, किशनगंज का 238, समस्तीपुर का 204 और मुजफ्फरपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 रिकॉर्ड किया गया। इधर राजधानी पटना में प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम की ओर से एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल का उपयोग किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के चौरा चौरी, गौरी बाजार, बैतालपुर स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज और कल गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस, नरकटियागंज गोरखपुर कैंट नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन और नरकटियागंज बढ़नी नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। दरभंगा, नरकटियागंज और जयनगर से खुलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन और ठहराव में भी बदलाव किया गया है। राज्य के चार जिलों भागलपुर, जमुई, बक्सर और मुंगेर स्थित पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनक, चंपा, इमली, सेमल और महुआ के 40 वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा दिया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि चयनित वृक्षों को हेरिटेज घोषित करने के लिए जैव विविधता परिषद को निर्देश दिए गए हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1910 में तत्कालीन बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1947 से वे पटना में रहने लगे थे। 1963 में बटुकेश्वर दत्त बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बने। इधर उनकी जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में आज सहकारिता मंडप का उद्घाटन किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। यह मंडप 4000 वर्ग फुट में फैला होगा। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के बकरी बाजार के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। अररिया जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ और हथियार तस्कर रियाजुल शेख को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक रिवॉल्वर और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर पश्चिम बंगाल के मालदह का रहने वाला है। औरंगाबाद जिले के पाड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत हवसपुर गांव में अवैध खनन और शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस मामले में 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। दानापुर नगर परिषद के उपसभापति दीपक मेहता की हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात शंकर यादव को एसटीएफ और दानापुर पुलिस की टीम ने सगुना मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी और मणिपुर हिंसा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जग दे इंडिया, अजय अभियान के साथ भारत सेमीफाइनल में। प्रभात खबर लिखता है, इम्फाल घाटी में भीड़ में 4 और विधायकों के घर फूके, एमपीपी ने लिया सरकार से समर्थन वापस। डॉल्फिन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा है, 29 साल बाद डॉल्फिनों ने 6 गंगा घाटों पर बनाया आशियाना। वहीं दैनिक जागरण ने भी डॉल्फिन संरक्षण से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, गंगा डॉल्फिन के लिए एम्बुलेंस सेवा पर मुहर। आज अखबार ने मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा के हवाले से लिखा है, शराब के धंधे में शामिल लोगों पर सीसीए लागू करेंगे। राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य अखबारों ने राजधानी पटना में अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजगीर में खेली जा रही महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल भारतीय टीम का जापान से और चीन का मुकाबला मलेशिया से होगा। बक्सर पुलिस ने पटना के महेंद्रू घाट में तैनात रेलवे के वरीय प्रशाखा अभियंता विवेक रंजन को 66 लाख रुपए मूल्य के सोने के साथ गिरफ्तार किया। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति। और प्रदेश में कई स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर। हाजीपुर और पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।